गोपियों ने जानबूझकर, इसलिए देवी सूर्य समस्त अवतारों के अवतारी और ब्रजेंद्रनंदन क्या है, उनसे इनका कोई भी संबंध नहीं। वो क्या है, वो उनके क्रीड़ाओं में मत रहने वाले समस्त ऐश्वर्यों को ढक करके वो अवतारी और भगवान नहीं। इसलिए इस चीज को दिखलाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा, इसलिए उन्होंने ऐसा क्यों अवतारी हैं, ये तो षड़ैश्वर्य के अंतर्गत अवतारी होना है। और ब्रज का कोई नहीं जानता है कि ये अवतार हैं, अवतारी की तो बात ठीक है, वो अवतार या अवतारी जो कुछ समझते हैं वो उनको समझते हैं, देवकी नंदन को अथवा नारायण को वो समझते हैं। इसलिए देवकी सुख कहने का तात्पर्य कुछ षड़ैश्वर्य पूर्ण भाव को दर्शाना है। इसलिए पहले तो कहा गोविंद वेणु, पहले कहा देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, इस कहने का ये बतलाया देवकी सुत के लिए ये अवतारी है। कृष्ण साधारण गोप नंदन है, इसलिए स्वर्ग में ये नहीं जा सकते। गरुड़ पर चढ़कर जो जाने वाले हैं देवलोक में, वो देवकी से दैव, दैव से देवकी, इसलिए जो स्वर्ग में जाएंगे गरुड़ पर चढ़ करके और षड़ेश्वर जो दाग दिखला करके उस पेड़ को उखाड़ लाएंगे और इंद्र को हरा देंगे, कृष्ण में ये सब क्षमता नहीं है। ये तो नारायण की उनमें कभी कभी प्रवेश करके गोवर्धन पर्वत को उठा लेता है, ये सब करा लेता है, ये कौन करते हैं, ये देवकी सुति हूँ जो वहां पर गए। किंतु देवकी सुत अवतारी होने पर भी जबकि इंद्रलोक में गए तो षड़ेश्वर जो पूर्ण रूप में गए, कृष्ण नहीं गए, देवकी सुत गए।
और भी तो है देव शब्द से, जैसे कीड़ा से भी आ गया है,
वो पीछे लाएंगे, अभी पहले इसको समझते तो वो बतला रहे हैं कि वहां गए, वहां पर उनका चरण नीचे नहीं गिरा, स्वर्गमय नहीं गया, वो तो गरुड़ पर बैठे रहे और गरुड़ पर बैठे बैठे उसको पेड़ को उखाड़ दिया, युद्ध भी किया तो वहां मुसीबत पर, और वहां पर गए तो महाराज चक्रवर्ती के रूप में गए, उस समय पादुका इत्यादि होगी, इसलिए वहां पर चरण चिन्ह पड़ने की संभावना नहीं। इसलिए देवकी सुध पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, वो स्वर्ग में यदि गए भी तो वहां पर नहीं है, संभव पर नहीं है। ये कहाँ संभव पर है, ये गोविंद वेणु गोविंद के चरणों की ही छाप वहां पर लगी, उसी की लब्ध लक्ष्मी मैंने शोभा। आज जब देवकी भी कहा तो उन्होंने बतलाया क्रीड़ा की देवियों से संबंधित क्रीड़ार्थी, देवियां मैंने यहाँ पर गोपियां ही कहें, या देवकी सुत यदि कहेंगे तो यशोदा जी का उल्लेख ही है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा दीतनोतु, दीतनोति है वो दीतनोति कीर्ति, दीतनोत का अर्थ क्या किया, तनोति माने विस्तार कर, वृंदावन का जब त्रिभुवन में देवलोक से भी स्वर्गलोक से भी द्वारका लोक से भी सबसे ये ऊपर विस्तार कर रहे हैं, जस का विस्तार कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहती हैं भी विशेष रूप से, कैसे विशेष रूप में, गोविंद के पद इत्यादि के द्वारा विशेष रूप में, विशेष रूप से जो वृंदावन में क्रीड़ाशील है वो विशेष रूप से तनोति, इसलिए किंतु अब गोविंद वेणु मनु, गोविंद वेणु अनु, आप गोविंद वेणु मनु, गोविंद वेणु अनु निरंतर अपने स्वर धारण करके जो निरंतर वेणु वादन कर रहे हैं, और वेणु मनु, मनु माने मंत्र, अरे वेणु का शब्द नहीं है, ये मंत्र है साक्षात। जैसे आदमी मंत्र के द्वारा आविष्ट हो जाता है, ऐसे वेणु के मंत्र ही यहाँ पर मानो समस्त सत्वों को मयूर नित्य, मत्त मयूर नित्य, मंत्र ने इनको मदमत्त कर दिया मयूरों को। कैसे मदमत्त हुए? ऐसे नहीं, मंत्र के द्वारा, कृष्ण ने मंत्र के द्वारा इनको प्रमत्त बना दिया। तो ये मंत्र क्या है? वेणु की ध्वनि ही मानो, जिससे गोपियां इत्यादि सभी आकर्षित हो जाती हैं, वो मंत्र है, ये शब्द नहीं है। मत्त मयूर नित्य, पहले गोविंद जी को, गोविंद को कृष्ण ने मयूरों ने देखा और उनको बादल समझ करके नित्य करने लगे, अपने पैरों को फैला दिया, परों को ऊंचा उठा करके और ताल के साथ में थिरकने लगे, कभी इधर से इधर, फिर इधर से इधर, करते हुए इधर से नीचे करते। कृष्ण ने देखा इसको और देखते ही उन्होंने अपने वेणु से अपने मंत्र को उच्चारित किया। उच्चारित करने के साथ साथ में और मत होकर के वो नाचने लगे, नाचने लगे। उन्होंने कृष्ण को के ऊपर में प्रसन्न होकर के, बड़ा सुंदर ये बंसी बजा रहा है जिससे कि हम इस पर नृत्य कर रहे हैं, इसलिए अपने एक पंख को छोड़ दिया। पंख को छोड़ दिया मैंने क्या, जैसे यहाँ पर अभिनय में कृष्ण जो बने हैं उनके एक झांकी होती है, उसमें ऐसे ऐसे ऐंच करके और दे देते हैं, ऐसे ही न्योछावर दिया इस मयूर ने। नृत्य करते हुए मैंने घुमाते हुए अपने उसी से ऐंचा ना, मयूर के पंखों से कृष्ण को, और ऐंच करके
मैंने आरती उतार,
आरती उतार करके अपने पंखों से, जैसे नोटों से आरती आजकल यहाँ उतारते हैं वैसे नहीं, अपने पंखों से ही आरती उतारी और उतार करके नृत्य करके भंगी से एक पंख छोड़ दिया। कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, मुझे परिष्कार मिला, और उन्होंने उठा करके अपनी पगड़ी में यहाँ पर रख लिया। जब रख लिया और बंसी बजाने लगे, अब तो मयूरों को बड़ा आनंद हुआ, ओ ये हमारे पंखों को धारण यहाँ पर कर रहे हैं और बंसी बजा रहे हैं। अब उस सादृश्य से और भी प्रमत्त हो गए और बड़े अच्छी तरह से नृत्य करने लगे, बंसी कृष्ण की भी बजने लगी खूब जोरों से। उसे हुआ क्या, प्रेक्ष अद्री सानु अवर्तानी समस्त सत्व, समस्त सत्व उस मयूर के नृत्य को देखकर और कृष्ण के मयूर पंख धारण करते हुए सुंदर मुखारविंद को देख करके, उनके बदन कमल को देख करके, सारे प्राणी वहां पर जो थे, कौन प्राणी, जितने भी प्राणी, पशु और पक्षी, पक्षी में सुख पक्षी और पपी है, तोते जो कुछ वो सब, इधर में पशु हिरण इत्यादि सभी, हो सकता है कि और भी वन्य प्राणी जो हों वहां पर वो सभी उपस्थित हो गए, किंतु समस्त सत्व, सत्य किसको कहते हैं, सत्ता को सत्व कहते हैं, जो संदनी के द्वारा उत्पन्न हो। संदनी कैसे उत्पन्न करती है, बलदेव प्रभु के अधिष्ठाती देवता है, तो बलदेव प्रभु के द्वारा शुद्ध ये संदनी शक्ति से बैकुंठ और बैकुंठ के ऊपर में जो सत्व होते हैं उनको शुद्ध सत्व कहते हैं। कृष्ण का शरीर इत्यादि जितना है ये सब भी शुद्ध सत्व है, जीव सत्व है, शुद्ध सत्व है, किंतु मिश्र सत्व हुआ है कब, जब इस जगत में जन्म लेता है, प्राकृत जगत में, जबकि मिश्र सत्व, मिश्र सत्व किसको कहते हैं, सत्व रज और तम, रजा और तम, मिले हुए जो चीजें हैं हम लोगों का शरीर बुद्धि इत्यादि प्राण जो कुछ है ये मिला हुआ है किससे? रज और तम से। इसलिए हमने क्रोध दंभ अभिमान ये सब भरे पड़े। जब तक शरीर रहेगा ये अनिवार्य रहेगा, तब भक्ति के द्वारा इसको प्रशमित किया जा सकता है, किंतु जब तक रहेगा तब तक इसकी होने की संभावना है। विषय छाड़ गया कभी विषयों से संपर्क दूर होने पर यह शुद्ध हो जाएगा, तभी क्रोध इत्यादि होने की संभावना बनी रहेगी, और जब एकदम छूट जाएगा तब ये सब छूट हो जाएगा। आत्मा का शरीर रहेगा उसमें शुद्ध सत्व, उसमें माया का कोई कुछ नहीं है। तो जहां पर तम और रज है मिला हुआ सत्व में, तब ये मिश्र सत्व एक शुद्ध सत्व भी है किंतु निर्गुण नहीं है वो, ये अध्यात्म है। अध्यात्म ये नहीं, सत्य रज तम है ना, इसमें से शुद्ध जो वो सत्य है, सत्य शुद्ध रह सकता है किंतु निर्गुण नहीं है। माया के अंतर्गत वो भी है, माया के अंतर्गत किंतु थोड़ा सा निर्मल हो सकता है, उसमें मनुष्यों की श्रद्धा भगवान के भक्ति इत्यादि के प्रति हो सकती है, किंतु उसे भी काम नहीं चलता। इसलिए विशुद्ध सत्व या शुद्ध सत्व की जरूरत है। इसलिए कहते हैं कि वहां पर माया नहीं है। कहां नहीं माया? इस वृंदावन में। इसलिए कहते हैं समस्त सत्वम माने संपूर्ण सत्वम, संपूर्ण सत्व माने विशुद्ध सत्व, एक वहां के मोर पशु पक्षी सब कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। जैसे वहां पर मान लिया कि वहां पर शुकर भी हो सकते हैं, हो सकता है बाघ भी हो सकते हैं, सर्प भी हो सकते हैं, किंतु जहां पर कृष्ण की बंसी बज रही है और मयूर नृत्य कर रहे हैं, कृष्ण खड़े हैं, सारे प्राणी वहां पर उपस्थित हैं, तो वो उनकी कैसे कृष्ण की सेवा कर रहे हैं? दूसरे प्राणियों की हिंसा नहीं कर रहे, उनमें तामसिक और राजसिक भाव नहीं है, यही कृष्ण की सेवा है। ये कह रहे जैसे यहाँ पर कोई दुष्ट आदमी भी है किंतु दुष्टता नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठ करके कथा सुन रहा है, यही उसकी सेवा है। कोई उपद्रव तो नहीं कर रहा है, इसलिए वो जो उपद्रव नहीं कर रहे हैं, सांप काट नहीं रहे हैं, व्याप कुछ आक्रमण दूसरे प्राणियों को नहीं कर रहा है, वहाँ पिहरणिया हिरण और दूसरे सब प्राणी लोग सब प्रकार से आंख बंद करके या तक तक से वहां पर कृष्ण को देख रहे हैं, मयूर के नृत्य को देख रहे हैं, ये जो देखना है इस रूप में, यही संपूर्ण सत्व। संपूर्ण माने एक सत्व, पहले से हुआ मिश्र, मिश्र के बाद में हुआ सत्व, इसके बाद में शुद्ध सत्व, इसके बाद में विशुद्ध सत्व। विशुद्ध सत्व योग माया उनकी स्वरूप शक्ति के द्वारा कृष्ण के लीला का संपादन और पुष्टि के लिए वैकुंठ और उसके ऊपर कृष्ण लोक में जो वस्तुओं को प्रकाशित करती है, वो तरुलता गुल्म पशु पक्षी गोप गोपी बंसी उनके नुपुर इत्यादि सब ये विशुद्ध सत्व के प्रकाश है। इसलिए कह रहे हैं कि ये सभी लोग समस्त सत्सम जितने भी वहां पर प्राणी हैं, ऐसा मत समो कि रजस्तम वाले हैं, निश्चय विशुद्ध सत्व हैं, वो समस्त वहां उपस्थित होकर के प्रेक्ष कृष्ण के मुखारविंद को दर्शन किया, श्याम सुंदर रूप को दर्शन किया और देखा कि मयूर का पुच्छ धारण किए हैं, त्रिभंग रूप में खड़े होकर के बंसी बजा रहे हैं और मंत्र उस बंसी की ध्वनि निकल रही है मंत्र, और यह है अमृत, इसको वो पान कर रहे हैं और कृष्ण के स्वरूप को देख रहे हैं। देख करके अद्रि सानु, अद्रि माने पर्वत, उसका सानु प्रदेश, सानु माने समतल, जो नीचे की समतल भूमि है, ऐसे वृंदावन में जहां पर कि ये गोवर्धन जी हैं, ये वृंदावन की शोभा बन का वृंदावनम सखी भूव पितुने करती, इसको याद रखना, वृंदावन की ये शोभा का वर्णन कर रहे हैं और ये स्वर्गलोक से भी बना रहे हैं ऊंचा। तो यहाँ पर बोलने का ये तात्पर्य, ऐसे गोवर्धन जहाँ पर कि रास इत्यादि नृत्य हो रहा हो, मयूर इत्यादि नृत्य नाच रहे हों और समस्त सभासद बैठे हों, कौन सूप पी कोयल और जितने हैं ये सब सभासद सब बैठे हुए हैं सज सज करके, जो बड़े सुरीले गान भी कर सकते हैं उनका नृत्य और बंसी का भैया मंत्र सुन करके सभी कैसे हो गए अवरतानी भूल गया। अवरतानी माने क्या? अवरत, औरत माने क्या होता है? जहां पर जिस स्थान से औरत माने तो एक तो होता है तन्मय हो जाना और दूसरा एक अर्थ होता है रजस तमा जहां से निकल गए हैं ऐसे गोवर्धन जहां पर श्री कृष्ण स्वयं वहां पर ऊपर चढ़ करके पर्वत की चोटी पर, पर्वत की चोटी क्या है? वृंदावन भूमि की पृथ्वी का वस्तस्थल है और उसके ऊपर में कृष्ण खड़े हुए हैं, वो है ना गोपियों का वो यप्ते सुजा, उसके ऊपर में ये बतला रहे हैं कि ये गोवर्धन के ऊपर में खड़े हैं, मानो कहाँ खड़े हैं कृष्ण, ये गोवर्धन पृथ्वी देवी उस रूप में उनकी सेवा कर रही हैं और वो पत्थर नहीं अत्यंत सुकोमल सुगंधी ये गिरिराज वहां का वो बने हुए हैं, ऐसे गोवर्धन है जहाँ कृष्ण की लीलाएं हो रही हैं, ये गोवर्धन जहाँ पर हैं वो वृंदावन, इसलिए वो बतला रहे वहां पर अवरत रजस्तम वहां पर नहीं है। सानु प्रदेश, कैसे सानु प्रदेश? पशु पक्षी जितने भी हैं ये सत्व हैं। कृष्ण की बेणुध्वनि मयूरों का नृत्य सुन करके सभी लोग प्रेम में मूर्छित हो गए। मूर्छित होने पर जैसे कबूतर है तोते हैं और सब चीजें हैं वो इतनी संख्या में थे चारों तरफ में भूमि वहां की पट गई और सभी एक के ऊपर में एक ऐसे ऊपर से उत्साह उदेश में एकदम सुशोभित हो रहे, किसी को होश नहीं है, समस्त कुछ भूल गए, अभी तक सब कुछ भूल गए संपूर्ण रूप से भूल गए, वहां पर माया नहीं रही है? वहां पर बन लता सर्व आत्मनि विष्णु व्यजयंता इव पुष्प फलाख्या, वहां पर लताएं हैं गुल्म है वो अपने को विष्णु ही व्यंजित कर रही, व्यंजित कर रही माने क्या? अतः तो कृष्ण को ही प्रकट कर रही है, वो ये भी विष्णु ही है, सब जगह ये बात है किंतु फिर भी भक्त वात्सल्य के लिए पेड़ का रूप धारण किए हैं, कोई लता का कोई वृक्ष का, ये साधारण नहीं है, उनमें रजत समय इत्यादि कुछ नहीं है, जैसे कि जमलादिन का पेड़ ऐसा मत समझो। वृंदावन की लता और वृक्ष ये विष्णु ही है, गोपियों ने भी जुगल गीत में ऐसा बतलाया। तात्पर्य क्या है? ये प्रभावशाली ऐसे ही है, साधारण में समझो ये वृक्ष है और लता है, विष्णु की भांति ये व्याप्त हैं सर्वत्र, अपना अपनी महिमा और शक्ति को प्रकाश नहीं कर रही, जैसे गोपियों को संकट पकड़ करके जैसे तैसे ले गया वो चलने लगी, यशोदा जी के सामने ही कृष्ण को पुतना ने पकड़ लिया और उनको मारने की चेष्टा की, ऐसे ही ये अपने स्वरूप में स्वरूप की शक्ति को दिखला नहीं है, पेड़ पौधे की तरफ में चुपचाप खड़ी है उनकी सेवा कर, बल्कि उनकी डालें नीचे उतर कर कृष्ण के चरणों में पुष्प का फल का उपहार दे रही है। भक्त वत्सता हेतु ये तरुलता अपने अपने भावों को अपने प्रभाव को प्रकाशित नहीं करती। नम्र शाखा के द्वारा कृष्ण के चरणों में पुष्प इत्यादि का ये उपहार दे रही हैं मधुधारा उस भक्त विशोर। इस प्रकार वैकुंठ के में ये प्रवृत्ति देखी जाती है पेड़ों की, वहाँ पर बंदर भालू सभी देखे जाते हैं, सभी कभी कौआ पक्षी भी, क्यों उनको वही स्वरूप पसंद है कि इसी स्वरूप में हम ऐसा करें। वृंदावन में भी ऐसे ये सब परम मुक्त हैं, साधारण नहीं, किंतु कृष्ण की सेवा के लिए अनजान बने हुए हैं, शक्तिहीन बने हुए हैं, ऐसे दिखते हैं। द्वितीय स्कंद में भी श्रीमद् भागवत में ऐसा बतलाया गया है, नजत्र माया किमुताम परे, वहां पर माया नहीं है। कौन माया नहीं है? महामाया नहीं, योग माया है। वहां पर जो कुछ होता है योग माया के प्रभाव से होता है, महामाया का प्रभाव ब्रजा से ऊपर नहीं इधर भी है, इसलिए वहां पर वो माया नहीं, इसलिए वहां पर कोई भी बद्ध जीव नहीं जा सकता। और मायाकृत रजा और तम और सप्त भी नहीं, इसलिए इन सब चीजों को साधारण मत समझना, इनको परम मुक्त समझना। कृष्ण लीला के सहायक उपकरण और सेवा वृत्ति युक्ति ये हैं। पहले एक सत्य के और भी अर्थ हैं। सत्य किसको कहते हैं? शुद्ध सत्य उसको बतलाया गया है जबकि किसी कृष्ण के नित्य परिकर जो रागात्मिक भक्त लोग हैं उनकी सेवा वृत्ति को देकर जब कोई साधक उसके प्रति सेवा को पाने के लिए लोभ होता है और लोभ होने के बाद में रागानुगा भक्ति का आश्रय करके भजन करता है, अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति के बाद में वह भाव उनके हृदय में जब प्रकाशित होता है उस प्रकाशित होने वाले भाव को सत्य, वो समृत और श्लाघनी का सार तत्व है जो जीव के शुद्ध सत्ता पर वो प्रकाशित है, उसको कहते हैं सत्य। रसशास्त्र में किंतु और भी बतलाया गया, ये बतलाया गया ये जो भाव अनुभाव सात्विक और व्यभिचारी जो भाव है इसे करके उत्तमा भक्ति के प्रसंग में ये बतलाया गया, जब हृदय विषयों से निर्मल हो जाता है और कृष्ण के रूप गुण इत्यादि के द्वारा क्या होता है मैंने जब उस पर प्रकटित होता है उसके अनुरूप हो जाता है, कृष्ण भाव में भावित हो जाता है, उस भाव भावित हृदय को सत्य होता है, तब उसमें अनुभाव संचारी अव्यभिचारी भाव प्रकटित होते हैं। जैसे कोई गोपी है वो किसी जैसे कृष्ण लीला के जो नित्य परिकर हैं उनका चिंतन करते करते और कृष्ण का उन्होंने स्मरण किया और कृष्ण की के मनोहर रूप को दर्शन की मन ही मन में स्मरण कर रहे हैं और उनकी लीलाओं को स्मरण कर रही है और करते 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 आत्मा के द्वारा उसमें चित्त बहुत प्रसन्न हुआ, आत्मा प्रसन्न हुई, उसके प्रसन्न होने से क्या हुआ ये मुख से भी हंसी निकल पड़ी, सत्य से प्रकाशित होने वाले भाव को अनुभव कहते हैं, ये सब कैसे होता है? पहले उसमें प्रभावित होता है। अर्थात कृष्ण के नाम रूप गुण इत्यादि के द्वारा अविष्ट जो चित्त है उसको सत्व कहते हैं, उसी में ये स्वभाव प्रकट होंगे, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं वो जो प्राणियां हैं उनको ऐसे ही समझो, साधारण नहीं है। बहुत हो सकता है कि कोटि कोटि जन्मों के राजानुगा वैष्णव हों या कुछ वैष्णव हों और इस जन्म में पेड़ लता वृक्ष इत्यादि होकर के आए हैं, वो ऐसे तत्व वाले बिना भजन प्राण हुए और इन उसी स्थितियों में नहीं भजन करने से ये सब समझ में नहीं आएगा। जब ये सब समझ में आएगा कुछ कुछ तो इन परिकरों के प्रति चित्त आप लुप्त होगा, ऐसे ही साधारण रूप में नहीं। तब तक हम लोगों को वैधि भक्ति का अवलंबन करना आवश्यक है। अब वहां पर आदृशानु में, आदृशानी माने पर्वत का वह भाग, निचला भाग किंतु कुछ ऊंचा, उपत्यका वहां पर बैठने इत्यादि का स्थान है, पेड़ पौधों से भरा हुआ, वहां पर ये सारे उपस्थित हैं। और एक के ऊपर में प्रेम के में की मूर्छा में मूर्छित होकर के एक पर एक गिरे हुए हैं सभी, वो दृश्य भी बड़ा मनोहर है। गोवर्धन में, और ये गोवर्धन कहाँ है? इसलिए ये वृंदावन, वहां पर ये वृंदावन की जैसी लीलाएं ये मोर पक्षी इत्यादि द्वारका में नहीं कूकते, कूकते होंगे, ये सब नाचना और कृष्ण को देकर के बंसी इत्यादि का भाव वहां पर नहीं आता। अयोध्या में नहीं होगा, बैकुंठ की तो बात ही क्या और स्वर्ग की तो बात ही क्या। श्री कृष्ण भी इनको ऐसा देख करके उनकी सेवा को ग्रहण कर रहे हैं। देखते हैं किंतु ये सब लीलाएं नहीं हुई, वृंदावन को छोड़कर के कहीं भी लीलाएं संभव पर नहीं। राधा कृष्ण की विग्रह हम प्रतिष्ठित करते हैं विभिन्न जगहों में, किंतु वृंदावन को छोड़कर के राधा जी तो जाती नहीं है, तो वहां पर क्या होता? वो राधा कृष्ण की मूर्ति भी वहां पर लक्ष्मी नारायण जैसे ही ऐसा ही समझ दूसरे जगह। इसलिए वृंदावन भूमि ही यही वृंदावन भूमि, वहां पर श्री कृष्ण भी उनकी सेवा को ग्रहण करते हैं। कैसे कैसे ग्रहण करते हैं? जैसे मोर सेवा कर रहे उसकी सेवा को ऐसा एक पंख ले लिया, उसको सेवा का सुजोग दे दिया और वो और भी प्रमत्त होकर के नाचने लगा। सुख पक्षी क्या कर रहे हैं? कलरव करना छोड़ करके, और समय में तो कलरव करते हैं, उनको निद्रा से उठाते हैं, किंतु इस समय सारी कुछ को वो भूल गए हैं। इसलिए वो मंत्र को सुन रहे हैं और ये नित्य को देख रहे हैं, कृष्ण का बंसी वादन देख रहे हैं, और सब कुछ अपना भूल गए। वहां पर चंचल जो हिंस जंतुओं का की कोई कल्पना नहीं की जा सकती, किंतु यदि हो भी हो तो वो यही सेवा कर रहे हैं कि वो कुछ करते नहीं है, शांत रूप से हैं। हो सकता है कि बाघ भी हो तो वो हिरण के साथ ही नहीं चल रहे हैं, परस्पर प्रेम से, जैसे चैतन्य महाप्रभु के समय में ऐसा हुआ, कीर्तन करते हुए हरि बोल करते चले जा रहे हैं। बाघ और बकरी, बाघ और ये हिरण एक साथ में चल रहे हैं, एक दूसरों का मुख चुंबन करते हुए चल रहे हैं और हरि बोल कर रहे हैं। अतएव कोई कल्पना करने की विशेष जरूरत नहीं है, ये सप्त शब्द से और अवर्तानी शब्द से ये एकदम अपने आप ये सब भाव आते हैं। इस प्रकार मयूरों के नित्य दर्शन के साथ में गोविंद के वेणुवादन लीलाओं को वो देख करके समस्त प्राणी की ऐसी दशा हो रही है। वो अभी जो हमने कथा कही ना उसको यहाँ पर दे रहे हैं सनातन गोस्वामी संक्षेप में, जो कैसे पहले वृंदावन में कृष्ण प्रवेश किया और वृंदावन में कृष्ण के प्रवेश करने के बाद में मयूरों ने देखा कृष्ण को मेघ के समान और नाचने लगे। जब नाचने लगे तो नाच्य नाच्य कृष्ण का मुख दर्शन करके मेघ समझ करके और वो उपहार दिया और कृष्ण ने पगड़ी में अपनी उसको खोस दी। खोस लेने के बाद में अब अपना पंख और कृष्ण के यहाँ पर लगा हुआ पंख को देख करके और भी प्रमत्त होकर के नाच रहे हैं और उनके नाच को देख करके कैसे सभी वहां पर प्राणी जितने भी हैं कैसे प्रेम में विभोर हो गए। पहले भगवत दर्शन, भाई भगवत दर्शन ऐसे नहीं होगा, कैसे होगा? साधन के द्वारा। वो साधन क्या है? भाव को उद्देश्य करके जब साधन होते हैं तो उसको साधन कर। हम लोग मनमाने ढंग से जो हरिनाम कीर्तन श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन करते हैं, अभी लक्ष्य ही नहीं हुआ ठीक हम लोगों का और साधन कर रहे हैं, वो भी बेमन से करते हैं, ये साधन पर्याय नहीं है, ये साधन आभास या साधन का भी विपरीत है। जब हमारा लक्ष्य स्थिर हो जाएगा तो भाव के उद्देश्य से जो अभी बतलाया उस भाव के उद्देश्य से जब ऐसा कठोर साधन होने लग जाएगा, कठोर साधन कर रहे हैं दूसरों के लिए, उसको कठोर नहीं प्रतीत होगा। जैसे एक आदमी दिन में 10 बार गोवर्धन की परिक्रमा कर सकता है किंतु 5 मिनट बैठ करके चित्त को स्थिर करके 5 में 1 मिनट भी बैठ करके हरिनाम नहीं कर सकता, या गुरु का दिया हुआ मंत्र 1 मिनट भी चित्त को स्थिर करके प्रेम के साथ में सहज रूप में नहीं कर सकता है, दिन भर परिश्रम कर सकता है, गोवर्धन की परिक्रमा कर सकता है किंतु ये काम नहीं होगा, और परिश्रम कर सकते हैं किंतु चित्त को लगा करके बड़े प्रेम से विषयों से हटकर और ऐसा जरा बैठ करके करो, ये निश्चिंत रूप में एकाग्र चित्त से कृष्ण लीलाओं का स्मरण करते हुए और इसको करो तो 5 मिनट का 1 मिनट भी ऐसा एक नाम भी ऐसा निकले जो कृष्ण को प्रसन्न के लिए किया जा रहा हो, सन्नय होकर आंखों के आंसुओं और हृदय की द्रवता के साथ नहीं हो, अभी अनर्थ। इसलिए ऐसा सद्गुरु हो उसे हरिनाम और दीक्षा, दीक्षा माने दिव्य ज्ञान और संबंध हो करके कृष्ण के साथ में हमारा क्या वास्तविक संबंध है, उस संबंध के साथ में यदि नाम हो तो वो नाम है। वो भी अभी नाम हुआ किंतु अभी संबंध युक्त हो करके जो नाम होगा और कृष्ण लीलाओं का चिंतन होते हुए एकाग्र चित्त से वो एक उद्देश्य किसलिए, भाव भक्ति की साधना करना, भाव भाव के सब पहले समझे तो भाव किसको कहते हैं, भाव ही नहीं जानते, भाव का ही अभाव है तभी साधन नहीं होगा, इसलिए भाव के लिए साधन करेंगे वो साधन होगा। क्या है वो? नित्य सिद्धस्य भवेत साध्य भावा साधन। साधन किसको कहते हैं पहले समझे, जो उत्तमा भक्ति कौन है, उत्तमा भक्ति अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यानादितम आनुकूल्येन कृष्णानुकूलनम भक्ति उत्तमा। याद करने से नहीं होगा, याद हो किंतु एक एक पद का अर्थ समझ करके इसको समझना और ऐसे आचरण के लिए एक उद्देश्य बनाएगी। ये कहां उत्तम भक्ति का मूल निर्देश महाभाव से है, ये समझे। उत्तम भक्ति का लक्ष्य क्या है? महाभाव की अंतिम सीमा समझो, मादन मूदन तक भी उसको समझ लो और समझने के बाद में तब उसका साधन आरंभ होगा। उस चीज को हम कैसे पाएंगे? बजी भक्ति या रागानुगार से, बजी भक्ति अत्यंत निम्न स्थान से आरंभ होती है और रागानुगार होती है कहां से? लोभ से उत्पन्न होती है। लोभ होता है कहां से? रुचि के बाद में आसक्ति से आरंभ होता है। होने के बाद में तब ये समझेंगे सारी चीजों को और समझने के बाद में तब उसका साधन करेंगे, जैसा कि हमारे गोस्वामियों ने किया। वो मुक्त पुरुष थे, मुक्त पुरुष होने पर भी हमारी शिक्षा के लिए साधन का ये साधन किया। महाप्रभु जी कृष्ण और राधा जी हैं किंतु हमारे जैसा संख्या रूप में रख करके नाम गणना करते थे, नाम को संख्या रख करके करते थे, सोते नहीं थे, रात भर उनकी कृष्ण की चर्चा करते रहते। इस तरह से कठोर साधन करने का शिक्षा दिया हमारे रूप सनातन और गोस्वामी ने भी, ठाकुर भक्ति ज्योतिनोद ठाकुर ने। कब वो सोते थे कब जगते थे इसका कोई इतिहास ही नहीं मिलता, सब समय अपने कामों में व्यस्त हैं, सेवा काम में। इस तरह से साधन करते 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 जब हवा बरसाएगी तब फिर प्रेम की सिद्धि सीखते हैं। पहले तो अभी भाव से उत्पन्न हो, इसलिए नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यं रीति शास्त्र। नित्य सिद्ध भाव है कौन? गोपियों के हृदय में, परिकरों के हृदय, वही शुद्ध सत्व के रूप में हमारे हृदय में आएगा। इसके लिए हम साधन करेंगे, कैसे आएगा ये सब शास्त्रों में वर्णन किए गए। इसलिए इन सब चीजों का साधन करेंगे तब साधन करेंगे, इसके बाद में होगी भाव भक्ति, इसके बाद में। इसके लिए ये सब सनातन गोस्वामी अनुग्रह पूर्वक दिखला रहे हैं। इन चीजों में कैसे हमारा लोभ हो, लोभ कैसे हो, ये लोभ के लिए ये सारी चीजें दे रहे हैं। जिस समय लोभ उत्पन्न हो जाएगा तब साधन के लिए चेष्टा करेंगे। इसको पाने के लिए साधन क्या है, तब गीता में चलिएगा द्वादश स्कंध बारहवें अध्याय। भक्तों का लक्षण क्या है, श्रीमद् भागवत का और चैतन्य चैतन्य का, वो सब कुछ दिया है। सुख दुख जो समझे, मान अपमान सह करके भी उनको कोई भी अनुराग और ये न आए, कोई गाली करता है देता है या प्रशंसा करता है, उनको कुछ भी आता जाता नहीं, मान अपमान में कुछ नहीं, सुख दुख में अनुद्विग्न मना, वो हमारा भक्त प्रिय है। जिसमें भक्ति हो जाती है, ये जो भक्ति है साधारण भाव भक्ति भी नहीं, उससे नीचे भी भक्ति हो, ऐसा आने के बाद में सब गुण उसमें आ जाते। गुण प्रधान नहीं, क्या प्रधान, भक्ति प्रधान। वो श्लोक है ना जिसमें भगवत भक्ति निश्चिंतना होती है, सब गुण आ जाते। नहीं आए तभी कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं, गुण तो अपने आप आएंगे ही। इसलिए हम लोगों को भाव साधन भजन भी करें निष्कपट रूप में, संसारी उसमें कोई भी रजा और तमह न रहे, ये होने चाहिए अभिमान और पाखंडता और सुख दुख इत्यादि आएंगे और भगवत भक्ति से भी। इसलिए निरंतर ऐसी हरि कथाएं सुनते रहें, भगवान का भजन करते रहें, धीरे धीरे साधन भक्ति में प्रवेश करेंगे। गौर प्रमाणंदे।